आत्मा जब शरीर छूटती है तो मन बुद्धि और संस्कार को भी लेके जाती है, वो जो स्टेज है आत्मा
आत्मा लेके नहीं जाती है, आत्मा स्वयं ही मन बुद्धि संस्कार सहित है। मन बुद्धि संस्कार को ही आत्मा कहा जाता है। मन संकल्प विकल्प करने वाला, वो शक्ति आत्मा की ही है, और फैसला करना निर्णय करना ये भी शक्ति आत्मा की है। और आत्मा में ये जो दोनों शक्तियां हैं, संकल्प शक्ति और फैसला करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये दोनों शक्तियां संस्कारों को अपने में तिरोहित करती रहती है। जैसे जैसे कर्म करते हैं वो संस्कार बढ़ते रहते हैं। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे संस्कार, बुरे काम करेंगे तो मन बुद्धि में बुरे संस्कार समाते रहते हैं। तो संस्कारों का जखीरा आखिरी जन्म में इकट्ठा हो गया, अभी रील घूम रही है 63 जन्मों की। जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं 63 जन्मों में, वो अभी हमारे सामने आ रहे हैं संकल्पों के रूप में, स्वप्न के रूप में।
मनुष्य हिसाब भी तो लेते हैं ना,
हम पुरुषार्थ अच्छा करना चाहते हैं, पुरुषार्थ हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन खराब संस्कार उदय हो जाते हैं तो अच्छा पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता, इतने प्रबल संस्कार होते हैं। इन तीन संस्कारों के विस्तार को दिखाने के लिए तीन मूर्तियां बताई दी। क्या? ब्रह्मा मूर्ति मन की यादगार है, और शंकर तीसरा नेत्र बुद्धि की यादगार, और इनमें भी परिवर्तन करने वाला कौन? वो विष्णु को दिखाया कि आखिरी में संस्कार परिवर्तन होंगे कैसे। तो आत्मा से संस्कार और बुद्धि अलग नहीं है, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा है। वेदों में भी कहा हुआ है मनरेव आत्मा, आत्मा मन ही है और कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य की आत्मा मन है या भगवान की आत्मा मन है? मनुष्य की आत्मा मन है। मन चलायमान होता है तो मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य का मन अगर चलायमान होना बंद हो जाए तो क्या कहा जाएगा? अमन चैन में रहने वाला देवता। पूरा चलता था, पूरा चलता था तो मना क्यों कर दिया? युद्ध करने के लिए मना क्यों कर दिया अर्जुन ने? पूरा ही श्रीमत पर तो नहीं चलता, पूरा श्रीमत पर चलता होता तो सीधा ही स्वर्ग में जाता है। वो तो युधिष्ठिर ही गया स्वर्ग में, अर्जुन कहाँ गया स्वर्ग में? तो बीच में ही लुढ़क गए।
बाबा शुक प्रमंडल तो मैं सामने आ गई।
अच्छा
तो मैं क्या परमंड रस साकर में तो अभी से परमंड रस को याद करना अच्छा है ना?
नहीं नहीं पक्का कर लो फिर याद करो। अभी से क्यों याद करो? जब तक पक्का ना हो जाए, निश्चित ना हो जाए, फिर याद क्यों करना? बेकार चला जाएगा याद करना।
निश्चित है इस पे कुछ। निश्चित
पूछते गाय के लिए
नहीं नहीं तभी क्या
तो संशय है तभी तो पूछा जाता है
संशय नहीं बाबा
अच्छा चलो
जो सीढ़ी का चित्र है ना उसमें त्रेता के अंत में तीन सीढ़ियां खंडित दिखाई गई
है
तो नष्ट देव तो चार है
नष्ट
देव चार है
नष्ट देव चार है
तो
एक तो उनमें जैसे है ही नहीं
तीन ही दिखाई
क्या उनमें एक जो है वो अष्टदेव में भी नहीं है और नष्ट देव में भी नहीं है वो उनकी वैल्यू को दिखाने के लिए बीच में रख दिया है क्या जैसे अष्टरत्न होते हैं ना एक दूसरे से ज्यादा वैल्यू वाले लेकिन उनमें उनकी वैल्यू को दिखाने के लिए एक ऐसा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं बहुत मिल जाता है पुखराज वो पुखराज अष्टदेव में भी नहीं है तो नष्ट देव में भी नहीं है कितनी भी ताकत नहीं रखता कि जो नष्ट देवों के साथ मिलकर के नष्ट होने का कार्य करा सके शक्तिहीन
सूर्य में कैसे आते हैं सूर्य स्वरूप में कैसे आते
हैं अरे बस उसको उसको दूसरों की वैल्यू को दिखाने के लिए दिखाया गया
लेकिन उनका पुरुषत्व तो ऐसा होगा
पुरुषत्व सबसे नीचा हो गया वो मणका बारह मणकों में ऐसा मणका हुआ निम्न कोटि का मणका हो गया और वास्तव में तीन ही नष्ट करने का कार्य करते हैं इस्लामी बौद्धि और क्रिश्चियन और इनके सब दूसरे दूसरे धर्म छेड़े हैं सहयोगी धर्म माया सभ्यता
माया कैलेंडर
हाँ
माया कैलेंडर
हाँ
माया सभ्यता क्या बात
ये सब माया भी बातें हैं तो माया भी सभ्यता लिख दी उनको पता ही नहीं है कि 2012 में जो विनाश होगा वो हद की बात है या बेहद की बात है पृथ्वी अपनी धुरी चेंज करेगी विनाश हो जाएगा तो पृथ्वी कोई चैतन्य माता है या कोई जड़ जमीन का गोला है तो उसमें परिवर्तन आएगा उसकी बुद्धि चेंज हो जाएगी
कैसेट नंबर जैसे बताया है कि फर्स्ट ब्रह्मा जो बताया है प्रथम ब्रह्मा पहला ब्रह्मा तो प्रजापिता सेकंड ब्रह्मा छोटी माता तीन नंबर
पहला ब्रह्मा प्रजापिता अगर प्रजापिता पहला ब्रह्मा है तो प्रजापिता को पहला ब्राह्मण क्यों कहा पहले ब्रह्मा के पहले ब्राह्मण
नहीं पहले ब्राह्मण बना
है
पहले ब्राह्मण बना
ब्राह्मण बिना ब्रह्मा के कैसे बन जाएगा ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या प्रजापिता पहले तो ब्राह्मण बने ब्राह्मण तब बने जब ब्रह्मा की औलाद बने ब्रह्मा जो नाम है वो समझने समझाने वाला है या सुनने सुनाने वाला है तो सुनने सुनाने का काम तो कोई भी कर लेगा
ब्रह्मा के जो सचता हुई उस तरह से खोल दिया
है
ब्रह्मा का जो सचता उस तरह से खोल दिया
क्या खोल दिया
रहस्य
ब्रह्मा
साथ
ब्रह्मा का जो रहस्य खोला वो तो समझने समझाने की बात हो गई वो तो प्रजापिता के द्वारा हुआ
हाँ तो वो एक नंबर हो गए
तो प्रजापिता तो पहला ब्राह्मण है पहला ब्रह्मा नहीं है प्रजापिता को भी सुनाने वाला कोई और है क्या
पिता माता भस्म ब्रह्मा हो गए पिता माता भस्म ब्रह्मा हो गए
अब गीता माता भी कोई एक है, एक झूठी गीता है, एक सच्ची गीता, गीताएं भी तो दो हो गई हैं? एक गीता सुनने सुनाने का काम करती है और एक गीता प्रैक्टिकल में परिवर्तन का कार्य करती है, तो कौन सी सच्ची गीता हुई? परिवर्तन करने वाली जो सच्ची गीता है वो एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनाई देती है।
युधिष्ठिर सीधा स्वर्ग में गया,
युद्ध में स्थिर रहेंगे तो सीधे ही शरीर से स्वर्ग में जाएंगे।
तो युधिष्ठिर तो ब्रह्मा को बताएंगे कहाँ गया वो सीधा स्वर्ग में?
वो ब्रह्मा की बात थोड़ी ही है, ब्रह्मा वो अब्बल नंबर आपने मान लिया
नहीं
है? फिर ब्रह्मा को आपने अब्बल नंबर मान लिया? मान तो लिया, तभी तो कह रहे हैं दादा लेखराज अब्बल नंबर ब्रह्मा है क्या? नहीं है। अब्बल नंबर ब्रह्मा तो वो है जो अब्बल नंबर विष्णु बनता है। प्रजापिता भी अब्बल नंबर ब्रह्मा नहीं है, पहले ब्रह्मा है या पहले ब्राह्मण? ब्राह्मण पहले, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहा जाता है। माने ब्राह्मण बनाने वाला कोई ब्रह्मा भी होना चाहिए।
अर्जुन की अर्जुन गया नहीं बोले?
अर्जुन ये तो बताया कि पांच प्रकार के पांडव हैं। एक तो सूर्यवंशी, उनका हेड बता दिया युधिष्ठिर, दूसरे भीम, उनका मुखिया बता दिया
शंकर,
हाँ जी, और
तीसरा अर्जुन।
अर्जुन जिन्हें जिसने पुरुषार्थ का अर्जन किया, फिर नकुल, न स्कूल का न उस स्कूल का, देवता भी नहीं बन पाए और पक्के विदेशी भी नहीं बन पाए, और फिर सहदेव। देवता खुद तो नहीं बने लेकिन देवताओं का सदैव सहयोग दिया। तो ये पांचों प्रकार के पांडव हो गए जिन्होंने राइटियस पार्ट बजाया है, लेफ्टिस्ट पार्ट नहीं बजाया है। जो लेफ्टिस्ट पार्ट बजाने वाले हैं वो कौरव और यादव हो गए।
शंकर शिव समान बन जाता है, शंकर जब शिव समान बन जाता है तब तब शिव का प्रैक्टिकल में जन्म होता है, वही शिव का प्रैक्टिकल जन्म ही है।
प्रत्यक्षता किसकी होगी? जो गुप्त है उसकी प्रत्यक्षता होनी है क्या? जो गुप्त है उसकी प्रत्यक्षता होनी है। अब एक ऊपर वाली सोल, एक नीचे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली सोल, नीचे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली सोल भी सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, जगत पिता। क्या 2500 वर्ष की हिस्ट्री में किसी ने उसको पहचाना क्या? इस सृष्टि पर तो रही कि नहीं रही? इस सृष्टि पर हीरो पार्ट बजाया या नहीं बजाया? बजाया, लेकिन फिर भी किसी ने पहचाना नहीं। ऊपर वाला जो सर्वशक्तिमान है वो भी सृष्टि पर आता है, वो भी गुप्त। तो दोनों की प्रत्यक्षता एक दूसरे के सहयोग से होती है। अगर ऊपर वाला ना आवे तो प्रजापिता की पहचान नहीं होगी। अगर प्रजापिता ना हो तो ऊपर वाले को कोई पहचानेगा नहीं। अरस परस है, एक भोक्ता भोगी और एक अभोक्ता।
तो
ज्ञान में आएंगे, जो पहली पहली डायनेस्टी है दुनिया की उसकी भी विशेषता है। क्या विशेषता है कि जो भी प्रजा के वर्ग लोग, प्रजावर्ग के लोग होंगे वो सब ज्ञानी तु आत्मा होंगे, सब ज्ञान में चलने वाले होंगे। अब प्रजा वर्ग वाली आत्माएं कोई राजपथ थोड़ा ही पाती है, तो
वो तो फिर 9 लाख होंगे ना।
है 9 लाख जिंदा रहेंगे?
9 लाख होंगे ना,
9 लाख जिंदा रहेंगे। जिंदा कितने रहेंगे? 4.5 लाख ही। तो 4.5 लाख जो है वो सब ज्ञानी तु आत्माएं होंगे। अब वो आज ज्ञान में चले या बाद में ज्ञान में चले, जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो ज्ञान में तो चलेंगे। ज्ञानी आत्मा में गिनती तो होगी उनकी, ज्ञान में उनका रस बढ़ जाएगा, लेकिन ऊंच पद नहीं पाएंगे। माता कहती कि हमारे घर वाले ऊंच पद भी आने चाहिए, है? हम लक्ष्मी नारायण बने ना बने, घर वाले जरूर बनना चाहिए, चाहे कितना भी अपोजिशन करें। हाँ तो बता दिया ना, सदगुरु निंदक और न पावे, उन्हें उतनी ऊंची स्थान नहीं मिलेगा जितना औरों को मिलेगा, पुरुषार्थ करने वालों को।
फिर वो भी तो अव्वल नंबर प्रजा है ना, प्रजा भी
अव्वल नंबर प्रजा होगी। कहाँ दूसरी डायनेस्टी की प्रजा, कहाँ सत्युग की 8वीं डायनेस्टी की प्रजा। प्रजा प्रजा में अंतर तो होगा, वो प्रजा भी तो जो नीची डायनेस्टी की प्रजा होगी वो भी तो कन्वर्ट होने वाली होगी, और फर्स्ट डायनेस्टी की प्रजा
नहीं
तो कन्वर्ट होने वाले होते ही नहीं,
कन्वर्ट होने वाले नहीं, कभी के अंत में होंगे ही ना।
वो आखिरी जन्म में तो सब कन्वर्ट हो, माया किसी को छोड़ती नहीं है।
बाबा भारतीय दुनिया में जब मकान बनाते हैं तो इंजीनियर प्लानिंग करते हैं,
है?
इंजीनियर प्लानिंग करते हैं,
प्लानिंग करते हैं,
हाँ, और जो वर्कर होते हैं वो प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली मकान खड़ा करते हैं। तो जो वर्कर के हिसाब से इंजीनियर को ज्यादा पैसा मिलता है और वर्कर को कम मिलता है,
है?
लेकिन ये यहाँ ज्ञान में तो उल्टा है।
कहाँ उल्टा है?
विजयमाला को ज्यादा सुख, विजयमाला होगी,
विजयमाला जो रानी बनती है, जन्म जन्मांतर आधीन रहेंगी राजा की, वो ज्यादा सुखी हो गए। आधीन को ज्यादा सुख होता है या स्वाधीन को ज्यादा सुख होता है? स्वाधीन ज्यादा सुखी रहता है।
रुद्रमाला के मन को तो मन को मतलब
रुद्रमाला के मन के शिव की माला है, वो तो विजय माला है, तो कौन सी माला ऊंची?
रुद्रमाला।
रुद्रमाला के मन के बनना है, खुश नसीब भी है, ये भगवान की माला है। रुद्र से ऊंचा कोई और है क्या? ज्ञानी ही किसका है? रुद्र ज्ञानी है, विष्णु ज्ञानी है कि थोड़ा ही कहा जाता है। अरे वैष्णवी देवी भी ज्ञान लेगी तो किससे लेगी? ज्ञान धन उसको कहाँ से मिलेगा?
नारायण
से मिलेगा,
डायरेक्ट मिलेगा।
डायरेक्ट न सही, डायरेक्ट क्यों मिले? जब नियम बना हुआ दुर्योधन दुशासन से ज्ञान लिया हुआ, अच्छा ज्ञान नहीं है क्या? तो किससे लेना चाहिए? कन्या माताओं से ज्ञान मिले वो ज्यादा अच्छा, या पुरुष चोले से ज्ञान मिले वो अच्छा? कन्या माताओं से ज्ञान मिले, उनके मुख से सुनना सुनाना अच्छा लगता है।
भगवान नारायण तो पैसा देता है,
देने वाला तो है। जो मनन चिंतन मंथन करेगा वही देने वाला होगा, अपनी गोट तो नशा चढ़े
तो बीच में काहे को किसी माता गुरु को।
कन्या माता पवित्र रहती है ना, पवित्रता पवित्र झोली में ज्ञान टिकेगा या अपवित्र बुद्धि में ज्ञान टिकेगा?
उसमें तो एवर प्योर है ना,
है?
उसमें एवर प्योर है।
हाँ जी, प्योरिटी की बात है।
चार ब्रह्मों में पहले ब्रह्म वैष्णव ही देंगे,
है?
चार ब्रह्मों में,
हाँ,
पहले ब्रह्म वैष्णव,
बिल्कुल सही बात।
दूसरा
अव्वल नंबर ब्रह्मा होगा तो अव्वल नंबर विष्णु भी तो बनेगा।
दूसरा गीता, गीता
छ ठीक है ब्रह्मा।
और तीसरा ब्रह्मा कृष्ण वाला
क्यों?
चौथा
कृष्ण वाली आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है, पूरा ही दुनिया धंधे साधन बना
उसमें बाबा, वो दुर्योधन दुशासन कहते हैं।
वो तो प्रवेश होने की वजह से है ना, ब्रह्मा में प्रवेश है
तो उसमें
ब्रह्मा थोड़े ही एवर प्योर होता है। ब्रह्मा एवर प्योर है या शिव एवर प्योर है? शिव एवर प्योर है। हाँ, पुरुषार्थ करने से लास्ट में एवर प्योर बन जाता है।
जो बच्चे ने जिस ब्रह्मा से जन्म लिया वो उसी को खा लेते
हैं।
जिन बच्चों ने जिन ब्रह्म से ज्ञान लिया,
ज्ञान ज्ञान देने वाला तो एक ही है प्रजापिता,
शिव ही है।
लेकिन
प्रजापिता के अंदर ही ज्ञान ज्ञान मिलता है, बाकी तो बाकी ब्रह्मा तो सब सुनने सुनाने वाले हैं ना। सुनने सुनाने वालों को ज्ञान देने वाला थोड़े ही कहेंगे। हाँ जी,
बाबा सच्चे योगी को दिन में कितने बार खाना खाना चाहिए? क्योंकि जो योगी रहता है उनको देह बांधने रहता है और उसको खाया क्या नहीं खाया क्या।
सोना कितनी बार चाहिए?
सोना तो एक ही बार,
एक ही बार सोना चाहिए, एक ही बार खाना चाहिए, एक ही बार सफाई करने जाना चाहिए, एक बार योगी, दो बार भोगी और तीन बार रोगी।
दिल्ली यार खाना क्या है, क्या रात को
है?
एक बार बोले तो दोपहर को क्या रात को?
हाँ हाँ, जब भूख लगे खूब कस के तब खा लो।
परम दामिश के या नारायणी नशा उसको
है।
परम दामिश के नारायणी नशा,
परम दामी स्टेज तो निराकारी स्टेज है, नारायण तो आनंद का सागर है या शांति का सागर है, तो आनंद में रहता है। मौज में रहो तो दूसरों को मौज कराओ, तो आनंद में रहना तो ऊंची स्टेज हो गई ना। शांति धाम है तो ऊंचा धाम, लेकिन शांति से भी ज्यादा ऊंची स्टेज कौन सी है? मुक्ति की स्टेज ऊंची है या जीवन मुक्ति की स्टेज ऊंची है? जीवन मुक्ति स्टेज ऊंची है। जीवन में रहते हुए भी शांत भी रहे और सुखी भी रहे, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसके
बाबा प्रमुख महाराज बोलते तुम मुरली में आ जाओ, परिवार बहुत कम हुआ है।
मुरली में आ जाओ, पूछो मुरली किसे कहा जाता है, उनसे पूछो तो कि मुरली किसको कहा जाता है, सो तो बताओ। तुम्हारे ब्रह्मा बाबा ने मुरली किसको बताया है, हैं? जो डायरेक्ट मुख से सुनी जाए सो मुरली, टैप रिकॉर्ड से सुनी जाए तो सेकंड क्लास हो जाती है, और जो सुन करके या पढ़ करके कागज पर पढ़ी जाए,
थर्ड क्लास,
दूसरा कोई पढ़ के सुनाए वो थर्ड क्लास मुर्गी हो जाती है। बीच में ही गाड़ दो बात को।
उनको बोला था हमने आएंगे, उनको नहीं बोला, मैं बोला परिवार बहुत कब हुआ है
बुलाते
हैं, निमंत्रण लेता।
बाबा ब्रह्मा को चतुरंग पंचानन कहते हैं, तो पांच नंबर का ब्रह्मा कौन सा है?
जिसका सर काट दिया गया। सर काट दिया जाता है तो आत्मा अलग हो जाती है ना, है? हाँ, तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जितने जितनों के नाम ब्रह्मा के ब्रह्म ही बने रहे, सर नहीं कटा, तो देह अभिमानी दाढ़ी मूछ वाले रहे या आत्माभिमानी हो गए? देहभिमानी है तो ब्रह्मा है, सर कट गया तो ब्रह्मा नहीं है। और चारों ब्रह्मा को चलाने वाला हो गया विष्णु भी नहीं, विष्णु भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा सु विष्णु वो भी क्या है?
ब्रह्मा,
वो भी तो ब्रह्मा है। सर किसका कट गया?
प्रजापिता
का सर कट गया। वो तो दिखाया है, प्रभुता पाए का ही मदनाई। हर चीज दुनिया की पहले सतो प्रधान, फिर बाद में तमो प्रधान बनती है। मनुष्य सृष्टि का पिता भी पहले सतो प्रधान पार्ट बजाता है, अंत में तमो प्रधान पार्ट बजाता है। राम ही रावण बनता है,
रावण ही राम बनता है।
अति कांत होता है, काशी में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में जाएगा। उसका अर्थ ये है कि काशी का अर्थ ये होता है जहाँ काश्य तेज से भरी पूरी नगरी हो। क्या? काशी के सारे कार्य बाबा की याद से चलते हैं। याद में अगर रहेंगे तो जैसे बाबा ही सारे कार्य कराता रहेगा, हमको अलग से कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं रहेगी। तो ऐसा प्रभाव है काशी का, वहां जाकर के जो जीते जी देवानु को छोड़ेंगे, क्या देह देह के संबंधियों देह के पदार्थों से बुद्धियों तोड़ेंगे तो वो फायदे में रहेंगे। कौन?
भारत माता वासी। विदेश में क्यों है बोले? स्वदेश में रहना चाहिए।
अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश में भेजे जाते हैं या स्वदेश में रहते हैं?
विदेश।
आजकल का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो ज्यादा बुद्धिमान भारत का तबका है, वो विदेश में जा रहा है या स्वदेश में उसको पैसा ज्यादा मिल रहा है? उसको ज्यादा प्राप्ति कहाँ हो रही है? विदेशियों को कदर है और स्वदेशियों के यहाँ बुद्धिमान तबके की कदर ही नहीं है। इसलिए वैष्णवी भी कहाँ सेवा कर रही है? विदेश में। क्यों? सबसे बड़ी सेवा क्या है?
पवित्रता।
नहीं, सबसे बड़ी सेवा है बाप को प्रत्यक्ष करना, वो तो ठीक है, प्योरिटी की पावर ही प्रत्यक्ष करेगी, लेकिन सबसे बड़ी सेवा है क्या? बाप को प्रत्यक्ष करना। और बाप को प्रत्यक्ष स्वदेशी करेंगे या विदेशी करेंगे? तो विदेश में अगर वैसे भी है तो बुरा है क्या? अच्छी बात है ना।
बाबा, आत्मा ज्यादा से ज्यादा दो जन्म स्त्री की हो, दो जन्म पुरुष के लिए की, लेकिन वार्तालाप दो सौ में बोला है, वार्तालाप 200 नंबर के सीधे में कि जो सतयुग और त्रेता रहते हैं उधर,
सतयुग में
सतयुग और त्रेता स्वर्ग हाँ। में एक जन्म स्त्री और एक जन्म पुरुष, मतलब वो हाफ बैलेंस रहते
हैं
हाँ। और जब क्षेत्रापन शुरू होते है
हाँ।
दो जन्म स्त्री के और दो जन्म पुरुष के
बैलेंस टूट जाता है,
तो सतयुग त्रेता में एक जन्म पुरुष और एक जन्म स्त्री ऐसे होते
हैं, इसलिए रहते हैं कि वहाँ बैलेंस होता है, आत्मा और शरीर का बैलेंस होता है। और द्वापर में देवान पड़ जाता है, बैलेंस टूट जाता है, इसलिए कभी कोई स्त्री के जन्म ज्यादा लेता है, कभी कोई पुरुष के जन्म लेता ज्यादा लेता है।
लेकिन बाबा
शूटिंग यहाँ होती है।
लेकिन बाबा जो हीरो पार्टनर है वो द्वापर और कलयुग में ही ज्यादा जन्म लेते हैं पुरुष के।
कौन?
हीरो पार्टनर
प्रजापिता जिसने यहाँ जितना जास्ती याद किया होगा, वो याद की पावर से उतना जास्ती सुख भोगेगा। स्त्री जाति ज्यादा सुख भोगती है या पुरुष जाति ज्यादा सुख भोगती है? पुरुष ज्यादा सुख भोगते हैं। रुद्रमाला के मणके ज्यादा सुख भोगते हैं या विजयमाला के मणके ज्यादा सुख भोगते हैं? है? रुद्रमाला के मणके पुरुष है ना, इसे ज्यादा सुख भोगते हैं। ज्यादा पुरुष जन्म रुद्रमाला के होंगे, रुद्रमाला के मणकों के होंगे या विजयमाला के मणकों के ज्यादा पुरुष जन्म होंगे?
रुद्रमाला।
जो चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी मण के हैं राधा जैसे, वो स्त्री जन्म ज्यादा लेंगे। जितना अव्वल नंबर का मणका होगा चंद्रवंशियों का, पहले पहले नंबर का, उतना जास्ती स्त्री चोला लेगा। लेकिन होते निश्चिंत हैं या राजाओं को तो दुनिया भर की चिंता, दुनिया भर की परेशानी।
ज्यादा सुख कैसे भोगते हैं? रुद्रमाला के मन के ज्यादा सुख कैसे भोगते हैं?
ज्यादा सुख विकारी सुख ज्यादा भोगते हैं, उधर निर्विकारी सुख भी ज्यादा भोगते हैं।
ज्ञान इतना क्लियर है कि अभी थोड़े दिन में बीके वाले सब दौड़
जेंडा देख के बीके का स्थान है उसके, वो आ गए घर में। हम बोले आ गए तो बाबा जी कैसे लगे थे? बोले मैं उधर जाना है। मैं बोली तुम कैसे थोड़ी कैसे सुनो, फिर आपको तुमको बताएंगे।
वो अच्छा लगा, प्रश्न पूछे
तो उसका उत्तर ही नहीं
देती।
बहुत ऐसे बड़ी सर्विस करती है, कोर्स लेगी तभी तो उत्तर देगी, बिना कोर्स नहीं कैसे बताते भी नहीं। ऐसे ढूंढ के आई, कोई उसको बताया भी नहीं।
किधर से बोल रहे? हाँ,
और उसमें वो सिर्फ लास्ट टाइम में देंगे।
लास्ट टाइम में क्या नहीं?
लास्ट टाइम में ही देंगे।
पूछ रहे तीखी दृष्टि और मीठी दृष्टि में क्या फर्क?
बाबा बहुत तीखी दृष्टि देंगे, बच्चे ठहर नहीं सकेंगे, ऐसा मुरली का वाक्य है ना, इसके बारे में वो पूछ रहे कि मीठी और तीखी दृष्टि में क्या अंतर है।
एक मीठी दृष्टि होती है खुशनुमा प्यार भरी दृष्टि, जैसे माँ बच्चे को देखती है तो प्यार से देखती है ना, और एक होती है प्यार तो नहीं है लेकिन शक्ति बहुत भरी हुई है। क्या
यानी कि धर्मराज का पार्ट?
हाँ जी, वाइब्रेशन। जैसे कोई अगर गंदे संकल्प चलाना भी चाहे
नहीं
तो नहीं चलेंगे।
बाबा द्वापर युग में वाल्मीकि ऋषि हुए थे,
वाणी
वाल्मीकि ऋषि,
वाल्मीकि
द्वापर युग में वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण लिखी।
हाँ, तो वो जब रामायण लिखने से पहले वो चोर थे, कहते थे
ठीक है,
तो उन्होंने मरा मरा का जप किया, यानी राम के अपोजिट होते हैं मरा,
राम जप का जप।
तो उनको मतलब दिखाते कि सिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने रामायण लिखी। फिर ये राम के अपोजिट मतलब जप करके मारा मारा का जप करके कैसे बाबा कैसे कैसे मतलब सिद्धि?
भक्ति मार्ग वालों ने कथा कहानियां बनाई है, बाबा ने ये बात थोड़ी बताई। दो ही शब्द हैं, अक्षर हैं, रा और म, कोई भी पहले बोलो तो फिर बोलने से राम भी हो जाएगा और मरा भी हो जाएगा। ठीक है जी, मरा तो राम बन जाएगा कि नहीं?
ये वाले कवाल नहीं बन गया। राम बोलिए अपना।
तो ऊपर पर छत्ति बना दी, वो भी सब भर गई है,
इधर खाली है
अभी भाई, उस साइड में खाली है
वो भर गई
है।
बीके वाले बात
जब आप चढ़ने लगे और
जब हम को तमिल लिखते हैं तो तीन बार बार माफ करते हैं, मतलब
है?
तीन बार माफ करते हैं और चौथी बार माफ नहीं करते।
माफ तो होता है, बताया तो कम से कम,
सच्चाई
छुपाया तो नहीं, लेकिन परसेंटेज कम हो जाती है। पहली बार जो दिया हो तमिल तो आधा माफ हो जाता है, क्या दूसरी बार फिर दिया तो परसेंटेज घटनी चाहिए कि नहीं घटनी चाहिए, ये आधा ही माफ होता रहेगा। तो जितनी बार देते जाएंगे उतना परसेंटेज घटती जाएगी, देते 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 बड़ परसेंट रह जाएगा माफ होना, बाकी सब धर्मराज के खाते में जाएगा।
बाबा भक्ति मार्ग में चारों धाम की यात्रा बताया
है,
यहाँ ज्ञान मार्ग में कंपील फरुखाबाद दिल्ली और चंडीगढ़ को चारों धाम कहे गए,
ऐसे थोड़े अपनी मनमत में थोड़े ही सारे बातें बना ले दी।
बाबा भी बच्ची का किधर होती कंपील में क्या करो तो
फरुखाबाद में ही हो रही, जब तक कंपील का मकान नहीं बनता है तब तक फरुखाबाद में ही है।
चित्र में राम
राम स्वयं पुरुषार्थ में पड़ा हुआ है, अब ब्रह्मा वाली आत्मा फिर भी खड़ी हुई है, ठीक है। क्रिश्चियन न ज्यादा पतित होते हैं न ज्यादा पावन बनते, क्रिश्चियन और क्राइस्ट की क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, तो ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा है या नहीं है, तो वो भी आखिरी जन्म में पूरा चौपट में नहीं गिरते हैं, और राम वाली आत्मा तो एकदम पटाक। क्यों गिरी, जो गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे, जितना गहरा गड्ढे में जाएगा उतने ज्यादा हाई जंप लगाएगा, जितना ऊंचा जाएगा उतना नीचे आएगा कि नहीं आएगा, कि बीच में आधार में लटका रहेगा। ये भी तो ऑलराउंड पार्ट बजाने की क्षमता की बात है ना। आत्मा में ज्यादा से ज्यादा दुख सहन करने की शक्ति होगी तो सुख सहन करने की भी शक्ति होगी, शक्ति दोनों प्रकार का काम करती है, सुख सहन भी करती है, सुख भी सुख भोगती है तो दुख भी जास्ती भोग सकती है। पांच हजार साल पुराना योग अभी का थोड़ा ही है, कितना साल पुराना योग है, 5000 साल पहले भी बाप ने सुनाया था पढ़ाया था, और अभी अभी फिर पढ़ाए रहे हैं सिखाए रहे हैं।
जब बाबा आते हैं जब तुम चले जाते हैं तो क्या है, वो कि घर में झगड़ा कर रही है, लास्ट ही जाना है, जाने के लिए मना कर रहे हैं।
कहाँ जाने के लिए?
बाबा के पास। گھر میں گھر میں آنے کے لیے منع کر رہے بابا
سر کلاس سے آنے کے لیے گھر میں منع کر رہے ہیں منع کر رہے ہیں
کلاس میں جانے کے لیے منع کر لے اچھا
سر بار چھوڑ کے کہاں جا رہے جب تک میں نے پتا تھا میں نے
مرلی میں تو بابا نے بولا ہوا ہے لوکک سمبندیوں سے نہ کچھ پوچھنا ہے نہ ان کی مت پر چلنا ہے چوبیس گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں کیا چوبیس گھنٹے گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں
جانے کے بعد میں پانچ بجے گھر کو آ جاتا نا بابا نظام آباد آنا بولا تو
ارے تو مہینے بھر چوبیس گھنٹے لگاتار گھر میں ہی بیٹھے رہتے کیا جی جس کے دل میں لگ گئی اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہاں جی اگر پریرنا سے ہی پڑھائی جائے تو پھر شیو بابا پرم نام میں بیٹھ کر کے پریرنا دیتا رہے وہ پڑھائی تھوڑا ہی ہے باپ کوئی ایٹم بم بنانے اور ان کو چھوڑنے کی پڑھائی تھوڑا ہی پڑھاتا ہے اور
باپ کو پہچانا بھٹکنا بند
ہے
باپ کو پہچانا بھٹکنا بند
بھٹکنا بند
ہے
ڈراؤنا
ہے
سنگم ہے ڈراؤنا ہی مایا تو اور
ڈراؤنا ہے
سنگم یوگ موجوں کا یوگ ہے کہ ڈراؤنا یوگ ہے سنگم یوگ ہے موجوں کا یوگ یہ بھی نہیں یہی کہا ہے کہ موجوں کا یوگ ہے سنگم یوگ اور باقی دواپر کل یوگ ہے ڈراؤنا یوگ اور ستیوگ تریتا ہے نربھے رہنے کا یوگ دیہ سمجھتے ہیں تو دیہ بان کے کارن ڈر لگتا ہے آتما سمجھے تو ڈر بھاگ جائے گا کیوں کیونکہ آتما تو مرتی نہیں کاٹی نہیں جا سکتی بگائی نہیں جا سکتی آتما تو اجر ہمارا وناشی اس کا کوئی کیا بگاڑے گا
سونے کی لنکا
ساری دنیا لنکا ہی ہے اونچے اونچے محل مانیاں اٹاریاں ہوائی جہاز ایروپلین موٹر کار ہیں یہ سب دیکھ دیکھ کے لوگ کیا سمجھتے ہیں راون کی لنکا کوئی سورگ سمجھے بیٹھے ہیں پرنتو انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ سورگ میں تو کوئی پرکار کا دکھ نہیں ہوتا یہاں تو سب بیمار پڑتے ہیں وہاں کوئی بیمار بھی نہیں پڑے گا محنت بھی کوئی نہیں کرنی پڑتی ہے شاریرک کوئی دھندا دھوری نہیں کرنا پڑتا پرکرتی سب کچھ پیدائش کرتی ہے
بابا پردرشنی چتر پردرشنی کا بک ہے نا تو لاسٹ پیج پیچھے میں ایسا ہے ایک گلدستہ ہے بابا اس میں آٹھ پھول ہے ایک ایک پھول میں ایسا لکھا ہے سہنشیلتا نربھیتا پویترتا ہرشت مکھتا مدرتا نمرتا انترمکھتا دھیریتا لاسٹ میں لکھا ہے کمل پھول سمان پویتر گنو مانا بابا یہ آٹھ پھول کس کس کو یاد رہتا سر چیتنیہ میں
اشٹ دیو ہیں جو دنیا کا پہلا نئی دنیا کا پہلا گلدستہ بنے گا اس میں سب پرکار کے پھولوں کا فاؤنڈیشن ہوگا نا
तो फूल दिखाई दिए, बाकी ये चित्र तो मनुष्यों ने बनाए हैं। और क्या चिट्ठियां पढ़ने का टाइम?
प्रश्न है बाबा,
60 में प्रश्न लिखो, बोलो। मुंह बैठ दिया हुआ है भगवान, बोलो बोलो। कागज में ही जब इतना लंबा चौड़ा लिखोगे तो बोलने में तो कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा। हाँ जी,
डायरेक्ट एडवांस में
है। डायरेक्ट एडवांस में कोई आता ही नहीं है, पूर्व जन्म में पहले ही बेसिक में आ चुके हैं। भक्ति पूरे होने से एडवांस में नहीं, एडवांस वालों की भक्ति नहीं चल रही है। जो एडवांस में चल रहे हैं वो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं कि नहीं है? वो भी भक्ति में चल रहे हैं, तो जो बेसिक वाले हैं उनकी भक्ति कैसे पूरी हो जाएगी? हाँ, बेसिकली आत्मा की कट उतरती है, वो आत्मा की कट कोई की पूर्व जन्म में ही पुरुषार्थ से उतर गई, कोई की रह गई, तो दूसरा जन्म लेकर के बेसिक ज्ञान लेते हैं। जैसे राम वाली आत्मा, सीता वाली आत्मा, दोबारा जन्म लेकर के उनको फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है बेसिक नॉलेज का। कोई ऐसे होते हैं कि पूर्व जन्म में ही उनकी बेसिक नॉलेज इतनी पक्की हो चुकी कि दूसरा जन्म लेकर जब आते हैं तो जैसे ही डायरेक्ट थोड़ा भी एडवांस ज्ञान सुना और उनकी बुद्धि फट से पकड़ लेती है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, लंबा चौड़ा पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है, जो भी ज्ञान में आवेंगे तो बेसिक कोर्स लेकर के ही आवे, डायरेक्ट भी आ जाते हैं। और एक प्रश्न आया है, पांडवों ने कौन सा जुआ खेला है? अरे जो जुआ खेला उसमें तनकी बाजी लगाई कि नहीं? अपने परिवार के जो भी सगे संबंधी थे उनका तन अर्पण किया कि नहीं जुआ में? है बीवी भी, छोटा भाई बाल बच्चे समान वो भी, और अपने को भी जुए में लगाया। तो यहाँ जो ज्ञान में चलते हैं, चाहे बेसिक में चलते हो चाहे एडवांस में चलते हो, यहाँ भी तन धन धाम सोहद परिवारा इनकी बाजी लगाई जाती है। ईश्वरीय कार्य में जो बाजी लगाए रहे हैं, जन 76 जब हुआ था तो बहुतों ने बेसिक में अपनी सारी बाजी लगा दी, बीवी बाल बच्चे भी स्वाहा कर दिए, यज्ञ में अर्पण कर दिए, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर यज्ञ में लगा दी। तो जुआ खेला कि नहीं खेला?
जुआ खेलना खराब समस्या
जी,
लौकिक में जुआ खेलना खराब समस्या।
ये तो लौकिक है कि अलौकिक है? है ये लौकिक जुआ है या अलौकिक जुआ है?
अलौकिक,
अलौकिक। ये तो बेहद का जुआ है, बेहद की बाजी है।
जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो ही खेल पाते हैं। हाँ जी क्या बोला
क्या बोला जोर से वो सुनाई नहीं दे रहे
मुरली में बोला कि मोर तीन उड़ाने उड़ता है हाँ। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भारतवासियों का राष्ट्रीय पक्षी तो पता ही है कौन सा है मोर। मोर जैसी पवित्रता की उड़ान भरनी है। एक बार उड़ान भरी दूसरी बार उड़ान भरी पहली बार की उड़ान है सती की शूटिंग में बेसिक नॉलेज में फिर दूसरी बार उड़ान है त्रेता युग की शूटिंग में द्वापर युग की शूटिंग में जिसे कहते हैं एडवांस ज्ञान और तीसरी उड़ान है जब प्रैक्टिकल कार्य करने वाली तीसरी मूर्ति निकलती है तो तीसरी उड़ान बढ़ेगा उसके बाद चौथी उड़ान बढ़ने की दरकार है
नहीं
दरकार ही नहीं है। इनकी बात तो सुनाई पड़ रही आपस में ही बतिया रहे अरे जोर से बोलो घर में लड़ाई होती है तब तो खूब जोर से लड़ाई।
हम बच्चे कहा है कि नेपाल में जाके सर्विस करने के लिए मतलब
आगम और निगम
जिसको गम नहीं
शास्त्रों का नाम है आगम और निगम निशेष गम। बाबा कहते हैं बेगमपुर के बादशाह कोई गम नहीं। तो दिल्ली का कोई बच्चे का नाम है जो अच्छी गीता पाठशाला चला रहा था बाबा उसकी गीता पाठशाला से खुश थे उसको डायरेक्शन दिया कि नेपाल में जाके सर्विस करो। हद के नेपाल में या बेहद के नेपाल बेहद के नेपाल वालों की सर्विस करो नाम वाला नई पाल वालों से होगा जो नई दुनिया की पालना करने का फाउंडेशन लगाएंगे। बाकी और धर्म के जो ग्रुप्स हैं एडवांस पार्टी में हो और चाहे बेसिक में वो नई दुनिया का फाउंडेशन नहीं लगा सकेंगे। अरे मोर नहीं होगा तो फिर कौन सा पक्षी होगा सत्युग में तो अच्छे अच्छे पक्षी होंगे अच्छे अच्छे जानवर होंगे दूसरे तो कोई जीव जंतु नहीं होंगे जो दुख देने वाले गंध करने वाले हों। अब तो मोर तो अपना आज भी राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। मोर का तो पूछ भी देह अभिमानी की कृष्ण के मुकुट में लगाई जाती है। तो जैसी मोर पवित्रता धारण करता है ऐसी इंद्रियों को हमको भी पवित्र बनाना है। मोर मोरनी साथ साथ रहते हैं लेकिन भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म नहीं करते। दुष्कर्म करने की तो बात ही नहीं। दुख देने की तो बात ही नहीं।
गैस के पाइपलाइन फटने से जल नहीं मिलेगा
है?
गैस के पाइपलाइन फटने से जल नहीं मिलेगा। और हज का गैस है और बेहद का गैस भी है। बेहद का गैस,
गैस की पाइपलाइन फटने से पानी नहीं मिलेगा।
जल विषैली बन जाएगा ना बाबा, गैस की पाइपें फटेगी।
हाँ,
तो बेहद का गैस क्या है?
गैस की पाइप फटेगी तो वायुमंडल विषैला बन जाएगा। जल जल में थोड़े गैस। अच्छा, जो सागर में पाइपलाइनें बिछाई गई, सागर का पानी तो वैसे भी पीने के लिए यूज नहीं करते, सागर की तो बात ही नहीं है। और गैस तो कहते ही है ऐश गई, ऐश में कहाँ गई? ऐश आराम करने में गई। तो जो ताकत ऐश आराम करने में जाती है उसी से गैस बनती है जिसमें से बदबू निकलती है। आदमी को भी गैस की बीमारी होती है कि नहीं? देवताओं को होती है क्या? क्यों नहीं होती? क्योंकि देवताएं ऐसा आराम में नहीं जाते, इसलिए उनको गैस की बीमारी नहीं होती। और
माया देवी कहते हैं, माया देवी कहते हैं, देवी कहते हैं,
माया देवी भी कहते हैं, शनि देव कहते हैं, राव ने भी अमृत पी लिया, वो भी खंडित देवता बन गया। देवता तो बना ना, अमर तो बना, लेकिन कैसा देवता बना? खंडित देवता बन गया। शनिदेव को भी देवता कहते हैं, लेकिन भाव स्वभाव संस्कार कैसा है? है दुख देने वाला भाषा बोलता है, अहंकार में ही भाषा बोलता है, तो उसने भी कुछ पवित्रता का पालन किया होगा। जैसे चंडिका देवी की पूजा होती है तो चंडिका देवी ने भी कुछ न कुछ पवित्रता की पालना की होगी। नंबरवार देवता है ना, जो अव्वल नंबर है वो तो एक ही है जिसकी कोई त्रुटि नहीं, कोई ग्लानि नहीं, शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं करता, नारायण। बाकी सब की कुछ न कुछ ग्लानी है। एक ही है जिसने संपूर्ण पवित्रता का पालन करके दिखाया, एवर प्योर शिव है, तो एवर प्योर पार्ट बजा करके एक ही दिखा पाता है। उसकी यादगारी भी बनाई जाती है, लिंग रखा हुआ कीचड़ में है, लेकिन अमोघ वीर्य कहा जाता है। ये प्योरिटी का पालन एक नारायण के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। और
अलग अलग है
है जी,
तीनों अलग है
क्या? राहु तो अलग है, राहु की दशा तो सबसे खराब होती है। बोलो बोलो बोलो।
शंकर द्वारा जो ज्ञान का प्रसाद बरसते है
शंकर द्वारा ज्ञान की बरसात बरसती है नहीं? राम
बाबा
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा अलग है, शंकर कहा जाता है तीनों के मेल को।
ब्रह्मा द्वारा
ब्रह्मा द्वारा बरसते नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बरसात नहीं होती है।
जीवन के बारे में समझाया जो बरसाते हैं
वो गरजता नहीं है, बरसता है। विष्णु जो है वो गरजने वाला नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन है उसका। कोई बादल ऐसे होते हैं गरजते हैं, बरसते नहीं। हाँ जी,
बरसते हैं वो साठ पत्थर बीट जमीन पर
है,
जो बरसते हैं वो पार पत्थर बीट जमीन पर।
वो जरूरी नहीं, बरसने वाले अच्छी जमीन पर भी बरसते हैं, पथरीली जमीन पर भी बरसते हैं।
ज्ञानी तो आत्मा जयमालों को कहेंगे या
जयमालों?
ज्ञानी तो आत्मा जयमालों कहेंगे या जयमालों?
ज्ञानी तू आत्मा वो है पक्का जो प्रैक्टिकल काम करके दिखाए, सुने भी सुनाए भी समझे भी समझाए भी और प्रैक्टिकल कर्म करके भी दिखाए। तो विजयमाला में जाना नहीं है आपको, फिर क्या बात, लक्ष्य नहीं है विजयमाला में जाने का
अभी?
हाँ
अभी तो है, अभी तो
अभी नहीं जाएंगे, पहले रुद्रमाला के मड़के तो बन जाए है। ये भी बात सही है, रुद्रमाला के ही मड़के नहीं बनेंगे तो विजयमाला में पिरोए कैसे जाएंगे?
है चतुर सुजान होते हैं विदेशी,
वो तो होते ही है, बाप को पहचान लेते हैं तो चतुर सुजान नहीं हुए? अरे वो भारतवासी है, भारत के कुंभकर्ण, भगवान आता है सारा कार्य कराता रहता है और वो पड़े 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 हैं अज्ञान नींद में सोते रहते हैं, उसको चतुरता कहेंगे? अभी भी उत्तर भारत में गंगा के किनारे पड़े हुए हैं, भाग जाना लोप हो जाना उड़न छू।
ये समय चल रहा है शूटिंग में, शूटिंग का बाबा, तो शूटिंग में शूटिंग का क्या मतलब?
यज्ञ के आदि में जब वो मॉडल भी नहीं बना था स्वर्ग का, तो मॉडल बनाने के लिए शूटिंग हुई या नहीं हुई? सन 36 से लेकर के 46 तक वो आरंभिक शूटिंग हुई, बहुत कच्ची कच्ची, और सन 47 में सरफ का मॉडल कराची में बनके खड़ा हो गया, जिसकी यादगार अजमेर में दिखाई गई है। कितना टाइम लगा? 10 साल लगा। ऐसे ही जो आदमी होता है वो अंत में भी होता है, अंत में है प्रैक्टिकल शूटिंग, इसका भी फाउंडेशन लगने में 10 साल लगते हैं। ब्राह्मणों की एडवांस, ब्राह्मणों की दुनिया में चारों युगों की शूटिंग का काल कब पूरा हुआ? दो हजार 98 में द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई, तो 8 साल लगे द्वापर युग की शूटिंग में, 12 साल लगे त्रेता युग की शूटिंग को, 4 साल,
2001, 2002, 2003
4 साल लगे द्वापर युग की शूटिंग की, 8 साल और त्रेता के 12, और सतयुग की शूटिंग के 16 साल। शास्त्रों में भी यही क्रम दिखाया है, कलयुग से द्वापर किया है दुगुनी, त्रेता की आयु त्रिगुनी और सतयुग की आयु चौगुनी दिखाई गई है। वास्तव में है तो चारों युगों की आयु बराबर, परंतु शूटिंग पीरियड में जो शूटिंग हुई है उस टाइम का हिसाब उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया है, क्योंकि मकान का चाहे चैतन्य मकान हो, दुकान हो, कोई किला हो और चाहे जड़ हो, उसका फाउंडेशन जमाने में टाइम ज्यादा लगता है या ऊपर की वाणी वाणियां बनाने में ज्यादा टाइम लगता है? बनाने वाले भी एक्सपर्ट होते जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है या घटती है? प्रैक्टिस बढ़ जाती है तो काम जल्दी जल्दी करते हैं अनुभवी होने के कारण, और टाइम भी कम लगता है। तो ऐसे ही 16 साल, 12 साल, 8 साल और 4 साल
2003
कलयुग की शूटिंग का टाइम पूरा हो जाता है,
और एक वर्ष रुंग का
2004। अब इसमें 10 साल वही आदि वाले फिर जोड़ दो, वहां तो मॉडल बना था, वो दिखावे का मॉडल था या सच्चा था? कराची में जो स्वर्ग स्थापन हुआ, इतना मारा मारी हुई, कोई को कहीं खरोच नहीं आई, पाकिस्तान के लोग उनको खुदाई खिदमतगार बोलते थे, उन बच्चों की पूरी सुरक्षा हुई। तो जो मॉडल था जड़ मॉडल, जड़त्वमयी बुद्धियों द्वारा बनाया हुआ मॉडल, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में अजमेर में दिखाई जाती है, वहां ब्रह्मा का मंदिर भी दिखाते हैं। जड़ मॉडल बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा। ऐसे ही जो चैतन्य मॉडल है उसकी भी शूटिंग होने में फाउंडेशन पीरियड में ये 10 साल का टाइम नुदा हुआ है। ज्ञान युक्त याद, ज्ञान का सार क्या है? हैं? सारा ज्ञान जो इतने विस्तार में है, सारा का इतना बड़ा बड़ा झाड़ है, सारा सागर है उसका सार क्या है? बिंदी। ज्ञान का सार क्या है? बिंदी। ये ज्ञान युक्त याद है। सार बीज को कहा जाता है।
संस्कार वाले कॉमन सभा वाले होते
हैं
लेकिन जो भी है वो कॉमन स्वभाव वाले बच्चे
बीके में कोमल स्वभाव संस्कार के होते हैं, कठोर स्वभाव संस्कार के नहीं होते। जो अत्याचार करने वाले हो माने बीके में जो आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें कठोर जड़े नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म की ही जड़ें हैं चंद्रवंशियों की। चंद्रवंशी तो 10-12% ही है, बाकी तो सब दूसरे दूसरे वंश के हैं। अलग अलग धर्मों के नारायण कौन है? कहाँ है? वो बीके में ही है। ऐसे थोड़े ही वहां सब कोमल स्वभाव के हैं। स्वर्ण कहा जाता है सत्युग को। सोने जैसी दुनिया कौन सी है? सत्ता युग। रजत दुनिया, चांदी जैसी दुनिया त्रेता युग। तो सत्युग में जो दुनिया है वो दुनिया का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कौन सी युग में? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। तो जहाँ फाउंडेशन पड़ता है नई दुनिया का वो ही स्वर्णिम संगम युग है।
स्वर्णिम
संगम
युग बोल रहे हैं बाबा। स्वर्णिम फिर वो हीरे का युग है ना?
हैं?
संगम युग तो हीरे
जैसा, वो ऐसा स्वर्णिम जिसमें हीरे जड़े हुए हैं। हीरो का हार, सिर्फ हीरो का हार होता है या सोने के साथ जड़त वाला हार होता है?
जड़त वाला।
हाँ जी
बाबा, कहा जाता है ऐसे कर दे ऐसे कर दे, तो क्या हम विस्तार से पहचान सकते हैं कि क्या कर्म किए होंगे जिससे हम ये
श्रीमत तो मिली हुई है? श्रीमत के अनुकूल कर्म किए होंगे तो अच्छी बरनी, और श्रीमत के बरखिलाफ मन मत पर या मनुष्यों की मत पर कर्म किए होंगे तो खराब बरनी। इतना विस्तार में रोज मुरली सुनाई जाती है, और ज्यादा विस्तार चाहिए? सारे कर्मों की ही तो गुह्य गति बताई जाती है मुरली में, और क्या बताया जाता है?
बरनी अनेक रूपों में होती है।
हाँ, जो कर्म करेंगे, जो कर्म करेंगे उसको भरना नहीं पड़ेगा।
कुछ रोग के रूप में होते हैं कुछ।
हाँ, तो दूसरे के शरीर को दुख दिया है तो रोग नहीं आवेगा। शरीर को शारीरिक दुख देंगे तो रोग आवेंगे। औषधालय खोलेंगे तो निरोगी बनेंगे।
और शरीर के रोगों में विभिन्न प्रकार के हैं।
जो भी विभिन्न प्रकार के रोग हैं वो पैदा किए हुए किसके हैं? हमने खुद ही पैदा किए हैं। प्रकृति के बरखिलाफ जब हम चलते हैं तो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा हो जाती है। ये शरीर की प्रकृति है। मनुष्य का स्वभाव संस्कार बिगड़ता है तो शरीर की प्रकृति भी बिगड़ती है।
और ये भी देखते हैं पशुओं का एक्सीडेंट भी होता है।
पशुओं का?
पशुओं का
हाँ जी।
उनसे मनुष्य के धर्म से कैसे?
क्यों मनुष्य जानवर पालता नहीं है? हैं? जानवरों को पाल करके जानवरों को दुख सुख जानवरों से नहीं लेता है? जानवरों से दुख भी लेता है और सुख भी लेता है, तो हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। बाकी ऐसा हिसाब किताब नहीं बनेगा कि जानवर योनि में जन्म लेना पड़े।
जीवात्मा कहते हैं परमात्मा भी संबंधित नहीं है तो जीव परमात्मा कहते हैं।
परमात्मा परमपिता गॉड फादर कभी मरता भी है? हैं? मरता कौन है? जिसका अपने शरीर में लगाव होता है वो मरता है, और परमपिता परमात्मा का तो शरीर में लगाव होता ही नहीं, तो मरेगा क्या? जो जन्म लेता है सो मरता है। पांच तत्वों के शरीर से परमात्मा जन्म लेता है क्या? नहीं, वो तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। बेहद की बात है, हद का जन्म तो होता ही नहीं। जो मृत्यु हो हद की, मृत्यु शरीर की होती है। प्रजापिता का शरीर है, ब्रह्मा का शरीर है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे थोड़े ही कि ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो परमात्मा मर गया।